स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। शारों का हाँ तू सोसन भी वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारों का हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं मैं तेरी ऐ प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से घर डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है और इसमें हम 7 कलीसियाओं के बारे में देख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के वचन के लिए, आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट बैठे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं और उसमें से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा, आप उनकी सहायता करें ताकि वे आपके वचन को समझ कर अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चलने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, चिंताओं से, शैतान के छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में है, अपने जीवन से निराश और परेशान है, चिंता और तनाव में है, अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं पारिवारिक रीति से, व्यक्तिगत रीति से। पिताजी, आप उनसे बोले और बातचीत करें ताकि वे इस बात को समझने पाएं कि आप उनके सृष्टिकर्ता हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं, आप चाहते हैं कि वे आपके पास आ जाएं। हाँ प्रभु जी, आप उन्हें अपनी शांति दें, उनकी सहायता करें। आज के वचन के द्वारा हर एक से आप बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कलीसिया के बारे में जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देख रहे हैं। सेवा देने वाली कलीसिया को संदेश भेजने के बाद प्रभु यीशु ने लौदिकिया की कलीसिया को संदेश भिजवाया। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद को। लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, अन्य कलीसियाओं से जब प्रभु यीशु कहा मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तो वह उनके अच्छे कामों के बारे में कह रहा था और उनकी प्रशंसा भी कर रहा था, परंतु इस कलीसिया के लिए उसके पास प्रशंसा का एक भी शब्द नहीं है। वे पूर्ण रूप से दोषी हैं, उनके काम भी बुरे हैं। कहता है तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। यह कहावत उस युग की पृष्ठभूमि से संबंधित थी और वहां के निवासी इसका अर्थ भली भांति समझते थे। घाटी में होने के कारण लौदीकिया वासियों को पानी की परेशानी थी। वहां के खंडहरों के मध्य खड़े होकर मेरे मित्र ने दक्षिण में फ्रुगिया के पर्वतों को देखा था और उसने मुझे बताया भी था। कुछ पर्वत बहुत ऊंचे थे। जून माह की पहली तिथि को भी वहां पर्वत चोटियों पर बर्फ जमी हुई थी। लौदीकिया वासियों ने उस बर्फ के पिघलने पर तैयार पानी को लाने के लिए पानी की नालियां बनाई थी। अपने स्रोत पर तो वह पानी बहुत ही अधिक ठंडा होता था, परंतु जब बहते बहते लौदीकिया को आता था तब वह गुनगुना हो जाता था। गुनगुना पानी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मेरे प्रियो, घाटी के नीचे तराई में जहां लाइकस नदी भयंदार नदी में मिलती है, वहां गर्म पानी के सोते हैं। पानी इतना गर्म होता है कि पानी में से भाप निकलती है। तुर्किस्तान की सरकार उन्हें रोककर उनका लाभकारी उपयोग कर रही है और गर्म पानी की बहुतायत के कारण वह विकास कार्यों में उसका उपयोग करना चाहती है। वह अत्यधिक गर्म होने के कारण जल का अधिकांश भाग भाप बन जाता है। लौदीकिया वासी जब इस पानी को ऊपर ले जाते थे तब वह ठंडा होकर गुनगुना हो जाता था। अतः जब प्रभु यीशु ने लौदीकिया की कलीसिया से कहा कि वे ना तो गर्म हैं और ना ही ठंडे हैं, तो वे समझ सकते थे कि उसके कहने का अर्थ क्या है। वे वर्षों से गुनगुना पानी पी रहे थे। पर्वतों का बर्फीला पानी वहां आकर गुनगुना हो जाता था और गर्म सोतों का पानी वहां पहुंचने के बाद गुनगुना हो जाता था। लोग उसे पसंद नहीं करते थे। आज भी या तो पानी बहुत ठंडा करके पिया जाता है या गर्म पिया जाता है। गुनगुना पानी अच्छा नहीं लगता है। प्रभु यीशु कहता है कि वह कलीसिया ना तो ठंडी थी और न ही गर्म, और प्रभु यीशु उसे मुंह से उगलने पर है। मेरे प्रियो, ठंडी कलीसिया का वास्तविक अर्थ है कि उसने विश्वास की प्रत्येक मूलभूत शिक्षाओं का इनकार किया है। वह केवल औपचारिकता निभा रही है और परमेश्वर के वचन तथा प्रभु यीशु के सुसमाचार के सक्रिय विरोध में है। आज आप देखेंगे कि सुधारवादी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का सक्रिय विरोध कर रहे हैं। गर्म आत्मिक जोश और मनोभावों का प्रतीक है, जैसा इफिसुस की कलीसिया में था, जबकि वे पहले प्रेम से दूर हो गए थे। ओह, पवित्र आत्मा उन्हें मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंधों में ऊंचाइयों पर ले आया था। लौदीकिया की कलीसिया न तो गर्म थी और न ही ठंडी थी, वह गुनगुनी अवस्था में थी। आज अधिकांश कलीसियाएं विश्वास से हटकर मध्य मार्ग में चल रहे हैं, बीच में हैं। वे परमेश्वर के वचन और मसीही विश्वास की महान शिक्षाओं के प्रति दृढ़ता से खड़े उस पर नहीं हो पाते, परंतु वे सुधारवादियों के वर्ग में भी कहलाना पसंद नहीं करते। मैंने ऐसे अनेक विश्वासियों से संबंध तोड़ दिए हैं। रूढ़िवाद में चरम सीमा पार करने वाले या सुधारवाद में चरम सीमा लांघने वाले, इनमें से अनेक जन दोनों ओर लुढ़कते हैं। हमारे यहां इस प्रकार की बातें प्रचलित है, बिना पेंदी का लोटा। मेरे प्रियो, यह वास्तव में संभव नहीं है। प्रभु यीशु इसी मानवीय स्वभाव से रुष्ट था। वह स्पष्ट कहता है कि मैं तुझे मुंह में से उगलने पर हूं। जहां तक मैंने समझा है, यह सबसे अधिक घृणित पाखंड है। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। दूसरा तीमुथियुस 3:5 में पौलुस कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। आरंभ में तो प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने मसीही विश्वास की सब महान शिक्षाओं को ग्रहण किया था, परंतु वर्षों के अंतराल में इनका विलोपन हो गया है। सब ऐतिहासिक कलीसियाओं के विश्वास का अंगीकार अद्भुत विश्वास वचन था, परंतु आज कौन उस पर ध्यान देता है? क्या हम इस महान अंगीकारों में विश्वास करते हैं? कलीसियाएं धार्मिकता का भेष धारण किए हुए हैं, परंतु उसकी शक्ति का इनकार करती है। वे जीवित तो कहलाती हैं, परंतु हैं मरी हुई। वे न तो ठंडी हैं और न ही गर्म हैं, वे गुनगुनी हैं। अब प्रश्न यह है कि आपका जीवन कैसा है? या तो आप ठंड रहें या गर्म रहें, परंतु गुनगुना ना रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज बहुत से विश्वासी इस वर्ग में नहीं आते हैं, परंतु अति भयानक विस्मयकारी और भयावह बात है कि प्रभु यीशु कहता है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। क्या यह सुनकर आपको ऐसा लगता है कि यह प्रभु यीशु द्वारा उठाई जाने वाली कलीसिया है जिससे उसने कहा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:2-3 में, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूं। यह वह कलीसिया है जिसे वह अपने पास लाता है, परंतु इस कलीसिया को तो वह उगल देना चाहता है क्योंकि वह गुनगुनी है। यदि आज वह कलीसियाओं को संदेश दे तो कहेगा, मैं तुमसे अत्यधिक उकता गया हूं, ऊब गया हूं। तुम कहते तो हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, परंतु तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मित्रों, हमारे लिए यह अपने मन को जांचने का संदेश है, क्योंकि हमारा समय ठीक वैसा ही है जैसा लौदीकिया की कलीसिया का था। आज कलीसियाओं का विभाजन प्रोटेस्टेंट और रोमी कलीसियाओं का नहीं है। आज कलीसिया विभाजित है परमेश्वर के वचन का अनुसरण करने वाले, प्रेम करने वाले और आज्ञा मानने वाले तथा वचन का अस्वीकार करने वालों में है कि आप किस प्रकार अपना जीवन जी रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:17 में लिखा हुआ है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यहां पर लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूं। लौदीकिया एक धनवान नगर था। मेरे विचार में लौदीकिया और सर्दिस उस युग में अपने क्षेत्र में सबसे धनवान नगर थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू कहता है मैं धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। जी हां, हम सोचते हैं कि पैसा मित्र बनाता है, शांति लाता है और संसार की समस्याओं का समाधान है, परंतु मेरे मित्रों, पैसे ने कभी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया है। लौदीकिया की कलीसिया ने यह करके देखा था, कहा मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। लौदीकिया की कलीसिया अपने समृद्धि पर घमंड करती थी, जबकि स्मुर्ना की कलीसिया गरीब थी। वह दासों और गरीबों की कलीसिया थी। आरंभिक कलीसिया में धनवान और कुलीन जन अधिक नहीं थे। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1:26 में पौलुस लिखता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। मेरे प्रियो, आज की कलीसिया अधिक सदस्यता, बड़े लोग, भरा हुआ आराधनालय, उदारता से दान देना और वैभवशाली आराधनालय के बारे में सोचती है। समग्र रूप में कलीसिया सांसारिक वस्तुओं में ही धनवान नहीं है, वह वास्तव में धन संग्रह के व्यवसाय में व्यस्त है। जी हाँ, लोगों से आग्रह किया जाता है कि वे संस्थाओं के नाम अपनी वसीयत लिखें। मेरे मित्रों, आपको देखना है कि किसी मसीही कार्य में दिया गया आपका पैसा कैसे काम में लिया जा रहा है। यदि आप किसी मसीह सेवा के नाम अपना पैसा कर देते हैं, तो आपको देखना होगा कि आपकी मृत्यु के बाद आपका पैसा उसी काम में लगाया जाएगा जिसके लिए आपने अपना पैसा संस्था के नाम किया है। पुस्तक के आत्मिक पृष्ठ पर लौदिकिया की कलिसिया अभागी थी। वह सातों कलिसियाओं में सबसे बुरी थी। वह दयनीय थी क्योंकि वह आत्मिकता में गरीब थी। उसमें वचन का अध्ययन नहीं था, प्रभु यीशु के लिए प्रेम नहीं था और उसके उद्धारक अनुग्रह की गवाही नहीं थी। इसके उपरांत भी वह अपनी वास्तविक दशा के प्रति अंधी थी। उसे धार्मिकता के वस्त्रों के आवरण की कमी थी। किसी पास्टर ने अपनी कलिसियाई पत्रिका में कभी लिखा था, जेन के नाम पत्र लिखा था, प्रिय जेन, मैं चाहता हूं कि आप अपने इस भावना को त्याग दें कि आप किसी काम की नहीं। आपने कई बार कहा है कि आप समझ नहीं पाती हैं कि प्रभु यीशु आपको कैसे काम में लेगा। आपकी इस भावना का दोष कुछ तो कलिसिया को भी उठाना होगा। मेरे विचार में यह कलिसिया की सफल कहानी वाली मानसिकता है। हमारी कलिसिया की पत्रिकाएं जॉन मनीवेग की कहानी सुनाती हैं कि उसने अपने प्रभावी पद को मसीह की गवाही देने में काम में लिया। कलिसिया के भोज में प्रसिद्ध खिलाड़ी की गवाही दी गई थी। इन बातों का प्रभाव यह होता है कि आप सोचते हैं कि आप न तो प्रसिद्ध मनुष्य हैं और न ही बड़े पदाधिकारी, अतः आप अपना मुंह बंद रखें तो ही अच्छा है। मसीह ने आपके लिए क्या किया वह कोई सुनना नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, हम मसीही गवाही का एक मूलभूत सत्य भूल चुके हैं जो वास्तव में आपको उत्साह दिलाएगी। परमेश्वर ने अज्ञानी को चुना कि बुद्धिमान को लज्जित करे। उसने संसार के दुर्बल को चुना कि बलवंतों को लज्जित करे। उसने निर्बल, अकिंचन, जी हां, ऐसी वस्तुओं को चुना जिनका अस्तित्व ही नहीं माना जाता है कि अस्तित्ववान वस्तुओं का दिखावा ध्वंस करे, जिससे कि परमेश्वर के सम्मुख कोई घमंड न कर पाए। प्रभु यीशु ने ओलंपिक के विजेता और रोमी अधिकारियों को नहीं चुना था कि अपने शिष्य बनाए। उसने आपके जैसे साधारण मनुष्यों को चुना था। कुछ मछुए थे, एक राजनीति का उग्रवादी था, एक चुंगी लेने वाला था जो समाज में स्थान नहीं रखता था, परंतु इन लोगों ने रोमी साम्राज्य को मसीह के लिए उथल पुथल कर दिया था। उन्होंने यह कैसे किया? क्या अपनी प्रसिद्धि के द्वारा? उनका तो कहीं नाम भी नहीं था। क्या अपने पद के द्वारा? उनका तो कोई पद ही नहीं था। उनका सामर्थ्य पवित्र आत्मा द्वारा मसीह यीशु का सामर्थ्य था। जी हाँ, जर्मनी के एक प्रसिद्ध आराधनालय पर लिखा है जो आज भी सच है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, तुम मुझे स्वामी कहते हो पर मेरी आज्ञा नहीं मानते। तुम मुझे ज्योति कहते हो पर मुझे देखते ही नहीं। तुम मुझे मार्ग कहते हो परंतु मुझ में चलते नहीं। तुम मुझे जीवन कहते हो परंतु मुझे चुनते नहीं। तुम मुझे बुद्धिमान कहते हो परंतु मेरा अनुसरण नहीं करते। तुम मुझे रूपवान कहते हो परंतु मुझसे प्रेम नहीं करते। तुम मुझे धनवान कहते हो परंतु मुझसे मांगते नहीं। तुम मुझे अनंत कहते हो परंतु मुझे खोजते नहीं। तुम मुझे कुलीन कहते हो परंतु मेरी सेवा नहीं करते। तुम मुझे अनुग्रहकारी कहते हो परंतु मुझ में विश्वास नहीं करते। तुम मुझे सामर्थी कहते हो परंतु मेरा सम्मान नहीं करते। तुम मुझे धर्मी कहते हो परंतु मेरा भय नहीं मानते। यदि मैं तुम्हें दंड दूं तो मुझे दोष मत देना। यह लौदिकिया की कलिसिया है। ऐसी ही कलिसिया के लिए किसी ने कहा है, स्टेनली हाई ने, कलिसिया मुझे यह बताने से चूक गई कि मैं पापी हूं। कलिसिया मुझ भटके हुए के साथ उचित व्यवहार करने से चूक गई। कलीसिया मुझे केवल प्रभु यीशु में उद्धार दिलाने से चूक गई। कलीसिया मुझे पाप के भयानक परिणाम, नरक की निश्चयता और केवल यीशु के द्वारा उद्धार का सत्य बताने से चूक गई। हमें अंतिम न्याय के विषय, अधिक और सुनहरे नियमों के विषय जानने की आवश्यकता है। जीवित परमेश्वर और जीवित शैतान के विषय भी अधिक जानना है। स्वर्ग अधिक और नरक कम पाना भी सीखना है। कलीसिया मुझे आदतें डालने का नहीं, नए जन्म का संदेश सुनाए। मैं ऐसी कलीसिया को निराश कर सकता हूं, परंतु ऐसी कलीसिया मुझे निराश नहीं करेगी। मेरे प्रियो, आज हम लौदीकिया की कलीसिया के सदृश्य वातावरण में हैं, और कलीसिया परमेश्वर के उद्धारक अनुग्रह की गवाही देने से चूक रही है। आपका जीवन कैसा है? क्या आप गवाही देते हैं? यदि आप गवाही देते हैं तो आपकी गवाही क्या है? क्या आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है? क्या आप उस उद्धार के आनंद की गवाही देते हैं? आज कलीसिया चूक रही है। मेरे प्रियो, आज अपने अपने विचार में जाएं, जीवन को झांक करके देखें कि आप कहां पर हैं, आपकी कलीसिया कहां है। आप कोई भी क्यों ना हो, अपने व्यक्तित्व में देखें कि क्या आप परमेश्वर के प्रति सत्यनिष्ठ हैं, या आप भी लौदीकिया की कलीसिया के समान हैं। लोगों के सामने आप अच्छा बनते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप वही कार्य करते हैं जो बुरा है, और तब वह कहता है कि वह उगलने पर है, इससे पहले कि समय निकल जाए। आप अपने मनों को प्रभु की ओर फिराएं, परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि वह आपके जीवन को बचाना चाहता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज आप एक सही निर्णय लेंगे और आज के वचन के अनुसार प्रभु की संगति में बढ़ेंगे। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।